हरे कृष्ण। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं भगवान कृष्ण के गुण भक्ति राम सिंधु 28वां गुण है। 28वां गुण यहाँ पे लिखा है संतुलन रखने वाले समहा। समहा मतलब राग द्वेष विमुक्तो यह समहा स कथितो बुद्धई। विद्वान लोग क्या करते हैं जो राग और द्वेष से मुक्त है उसको समाह कहा गया। समाह संतुलन रखने वाला समदर्शी। और यहां पर श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कृष्ण के समभाव का उदाहरण श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 16 अध्याय के श्लोक संख्या 33 में 100 मुख वाले काल्य को प्रताड़ित करने के प्रसंग में प्राप्त होता है। जब काल्य को कठोर दंड दिया जा रहा था तो उसकी समस्त पत्नियां भगवान के समक्ष प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप समस्त प्रकार के आसुरी जीवों को दंडित करने के लिए अवतरित हुए हैं। हमारा पति ये काल्य अत्यंत पातकी है, अतः आपके द्वारा उसको दिया जाने वाला यह दंड सर्वथा उपयुक्त है। हम जानते हैं कि आपके शत्रुओं को दिए जाने वाला दंड तथा अपने पुत्रों के प्रति किए जाने वाला व्यवहार दोनों एक समान होता है। हम जानते हैं कि इस अभागे जीव के भावी कल्याण को सोचते हुए आपने इसे दंड दिया है। यानी भगवान अगर किसी को दंड भी देते हैं तो उसके लाभ के लिए। सूरज का प्रकाश अगर मलमूत्र में पड़ता है तो मलमूत्र को भी पवित्र करता है। इसी तरह से भगवान किसी असुर या राक्षस का वध करते हैं तो उसका भी उद्धार करते हैं। तो यहां पर कालिया नाग की जो पत्नियां हैं जिन्होंने प्रार्थना की वो ये कह रही हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा उन्हीं का कल्याण होगा। अगर वो इस तरह का दंड प्राप्त करते हैं तो कल्याण उनका है। तो भगवान सबके हितैषी हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान ही कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान सबके हितैषी हैं और इस कारण से भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कि गीता में आपने ये भी देखा होगा भगवान ये कहते हैं कि ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई मेरा शत्रु है, लेकिन जो है भक्त है वो विशेष रूप से क्या है, विशेष रूप से प्रिय है भगवान। वैसे भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन भक्त जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। फिर कोई पूछ सकता है ये कैसे है, माना जाए ये कैसे समझा जाए। एक जगह तो आप कह रहे हैं कि भगवान समदर्शी हैं और दूसरी जगह आप ये कहते हैं कि भक्त बड़े प्रिय हैं भगवान को। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे राजा प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा की सुरक्षा करता है, लेकिन उनके जो परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्य हैं उनका ज्यादा ध्यान रखता है। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है राजा के लिए। इसी तरह से भगवान के लिए स्वाभाविक है जो उनकी भक्ति करते हैं भगवान का अधिक ध्यान रखते हैं। ये पक्षपात नहीं है, ये स्वाभाविक है। सूरज की रोशनी ये सब जगह है, लेकिन हम बंद कमरे में बैठ जाएं तो सूरज को दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो सूर्य की रोशनी का लाभ उठाना चाहता है तो सूरज के वो समक्ष जाएगा, उसका लाभ उठाएगा। तो भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। और अन्य स्तुति में ये भी कहा गया है कि हे भगवान कृष्ण, हे यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, आप इतने निष्पक्ष हैं कि यदि आपका शत्रु भी योग्य है तो आप उसे पुरस्कृत करेंगे, और यदि आपका कोई पुत्र दोषी है तो आप उसे दंड देते हैं। ये वास्तव में भगवान ने करके दिखाया। इसलिए हम देखते हैं कि जब वो भगवान श्री राम अयोध्या में वो एक गुप्त रूप में गए ये सुनने के लिए कि प्रजा में लोग क्या चर्चा करते हैं, ये देखने के लिए जब गए तो वहां पे कुछ अयोध्या वासी चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं राम नहीं हूं, जो इसको वापस रख लो, किसको, पत्नी को, जिस तरह से भगवान राम ने किया कि सीता जी रावण के पास गई और वापस भगवान ने रख लिया। मैं वो वैसा नहीं हूं व्यक्ति, मैं इतना ऊंचा हूं, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, इतना महान व्यक्ति नहीं हूं। तो जब ये भगवान राम ने सुना तो उनको बड़ा धक्का लगा और उन्होंने प्रजा के समक्ष आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान ने क्या किया, सीता जी का परित्याग किया। तो इसको कहते हैं समदर्शी होना। तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि शत्रु भी योग्य है तो आप उसे पुरस्कृत करेंगे और यदि आपका कोई पुत्र दोषी है तो आप उसे दंड देते हैं, ये आपका ही कार्य है। जिस तरह से हम देखते हैं कि वृत्रासुर जो है वो एक तरह से राक्षसयोनि में गया था, लेकिन क्योंकि राक्षसयोनि में जाने के बावजूद भी वो भगवत भक्ति में लगा रहा और इंद्र प्रहार कर रहे थे, इंद्र के साथ युद्ध भी हो रहा था, तब भी वो भगवान का गुणगान कर रहा था वृत्रासुर। राक्षसयोनि में जाने के बावजूद भी वृत्रासुर का उद्धार हो गया, वृत्रासुर को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, लेकिन इंद्र तो स्वर्गलोक का ही सुख भोग रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है भाव देखते हैं, और कोई अगर असुर भी है, राक्षस भी है और शत्रुओं के समय पक्ष में भी है, लेकिन वो भगवत भक्ति में लगा है तो भगवान उसका साथ देंगे। प्रहलाद महाराज देखिए, राक्षस के परिवार में जन्म लिया, हिरण्यकश्यप के परिवार में जन्म लिया, हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया, लेकिन प्रहलाद महाराज चूंकि भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे थे बचपन से ही, तो भगवान की रक्षा कर रहे थे। हालांकि हिरण्यकश्यप कितना बड़ा शत्रु था हिरण्याक्ष भी, लेकिन फिर भी भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे हैं। ये भगवान क्या कहते हैं, भगवान का जो है ये गुण है समदर्शी होना। ये आपका ही कार्य है क्योंकि आप ब्रह्मांडों के परम सृष्टा हैं, आप तनक भी पक्षपात नहीं है। यदि किसी को आप में लेश मात्र भी पक्षपात दिखता है तो वह निश्चित रूप से भूल कर रहा है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, भगवान शायद पक्षपात कर रहे हैं। मोबाइल आप प्लीज स्विच ऑफ करके रखिएगा। न्यायाधीश को आप दोष नहीं देख सकते हैं अगर वो किसी को सजा देता है या किसी को पुरस्कार देता है, क्योंकि जो कानून में लिखा गया है उसी को पढ़ के सुनाता है। तो सृष्टि का जो नियम है वो लागू होता है सभी जीवात्माओं के ऊपर। जो सृष्टि के विरुद्ध जाते हैं, सृष्टि के नियम के विरुद्ध जाते हैं, उनको उस तरह का फल प्राप्त होता है, और सृष्टि के नियमों का जो पालन करते हैं उनको पुरस्कार मिलता है, पुरस्कृत किए जाते हैं। ये स्वाभाविक है, ये स्वतः ही होता है, ये प्रकृति का नियम है। यदि किसी को आपने लेश मात्र पक्षपात दिखता है तो वह निश्चित रूप से भूल कर रहा है। तो इसलिए न्यायाधीश को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि किसको उसने दंड दिया है या किसको उसने पुरस्कार दिया है। सराज भगवान को हम दोष नहीं दे सकते हैं, इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रबुद्यन्ते ताम सते भजाम्य। जिस तरह हम भजन करेंगे भगवान का, भगवान भी उसी तरह हमारा भी भजन करेंगे। जितने स्तर पर हमारी शरणागति होगी भगवान भी उतना ही हमारा चिंतन करेंगे, बल्कि भगवान तो सदैव हमारा चिंतन करते हैं। लेकिन भगवान तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिस भाव में भी आप भगवान को संबोधित करते हैं उसी भाव में भगवान भी आपका चिंतन करते हैं। जितनी मात्रा में हम धोखा देंगे उतनी मात्रा में धोखा भी खाएंगे, और ये बात जो है शुद्ध भक्तों का जब आश्रय लेते हैं तब भी लागू होती है। इसी तरह शुद्ध भक्त भी जो है वो संदर्शी होता है, शुद्ध भक्त में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। ये शुद्ध भक्त कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। शुद्ध भक्त तो गुरु परंपरा के शरणागत होते हैं, उनका एक ही चरम लक्ष्य होता है कि कैसे वो अपने गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए दिन रात सेवा में लगे रहे। और जो भक्त इस भावना से उनके साथ लगे होते हैं तो गुरु उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। किस कारण से? कि ये भक्त जो है मेरी सहायता कर रहा है कि मैं अपने गुरु की सेवा कर सकूं। तो इस प्रकार की संभावना बनी रहती है गुरु में। वो गुरु कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन शिष्य अगर उसकी दृष्टि अगर सही नहीं है तो वो गुरु में भी फिर दोष देखेगा, अपराध कर बैठेगा, और गुरु में दोष देखना तो वैश्य अपराध बन जाएगा, गुरु अपराध बन जाएगा। भगवान में अगर दोष देखते हैं तो सेवा अपराध लगता है, हो सकता है भगवान क्षमा कर दें आपको, लेकिन अगर गुरु के प्रति अपराध हो गया, ये भाव ने रखा कि गुरु संदर्शी नहीं है, ये वैष्णव संदर्शी नहीं है, तो वो वैष्णव अपराध बन जाएगा। तो शुद्ध भक्त के बारे में कभी इस प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए कि ये शुद्ध भक्त है, गुरु है, या गुरु के पद पर है तो ये क्यों वैसे पक्षपात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन के अनुसार कई बातें नहीं होती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, जब हमारे मन के हिसाब से होगा तो हमें लगेगा कि सही न्याय है। अब सुनने की बात को, तो पूरा संसार हमारे मन से नहीं चल रहा है, पूरी सृष्टि हमारे मन के अनुसार नहीं चल रही है, वो भगवान के आदेश अनुसार चल रही है। तो कई बार होता है कि जैसे जब दीक्षा का समय भी आता है तो गुरु दीक्षा देते हैं, कुछ लोगों को रुकने के लिए कहते हैं, कुछ लोगों को दीक्षा देते हैं, तो किसी प्राकृत भक्त को यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु किसी का पक्षपात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। और बल्कि उस भक्त को यह सोचना चाहिए कि शायद मैं इतना योग्य नहीं हूं अभी, ये मेरा परीक्षा का समय है कि कितना मैं सहनशील हूं, गुरु मुझे नम्र बनाना चाहते हैं और मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, ताकि और मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं सोच लूं और दीक्षा लेने से पहले, इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना रखने पर अपराध होता है, बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये जो समदर्शी की बात कही गई है केवल कृष्ण के लिए नहीं है, भगवान के लिए नहीं, अभी तो उनके भक्तों के लिए भी है जो उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, वैष्णव। अगला गुण यहां बताया है वदान्य है, उदार। जो व्यक्ति अत्यधिक दान देता है वह उदार या वदान्य कहलाता है। जब कृष्ण द्वारका पर शासन कर रहे थे तो वे इतने वदान्य एवं धनी थे कि उनके दान की कोई सीमा नहीं थी, यहां तक कि चिंतामणि कल्पवृक्ष एवं सुरभि गायों के ऐश्वर्य से युक्त वैकुंठ का भी अतिक्रमण हो चुका था। भगवान कृष्ण के वैकुंठ में, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं, असीम मात्रा में दूध देने वाली सुरभि गाय रहती है। वहां पर कल्पवृक्ष हैं जिनसे इच्छानुसार कितनी ही मात्रा में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। वहां की भूमि चिंतामणि से बनी हुई है, जिसे यदि लोहा छू जाए तो वह सोना बन जाए। दूसरे शब्दों में, यद्यपि कृष्ण के धाम वैकुंठ लोक में हर वस्तु अति ऐश्वर्यवान है, तो भी कृष्ण द्वारका में थे तो उनका दान गोलोक वृंदावन के ऐश्वर्य से बढ़कर था। कृष्ण जहां भी रहते हैं वहीं गोलोक वृंदावन का सीम ऐश्वर्य स्वतः पाया जाता है। ये दान की बात की जा रही है कि भगवान कितने वदान्याय होते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिश्वे नमः। तो इस पे तो अलग ही चर्चा हो सकती है वदान्याय के ऊपर, तो क्योंकि सबसे अधिक वदान्याय या नमो महावदान्याय जिसको कहते हैं महाप्रभु के लिए, उनसे ज्यादा वदान्याय तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है किसी अन्य अवतार ने नहीं दिया है, स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तब भी नहीं दे पाए जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलव उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियम। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि कलयुग के पद जीवों को श्री चैतन्य महापुरुष ने जो दिया है, ब्रज का प्रेम दिया है, उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान किया है, किसी अन्य अवतार में किसी भी युग में नहीं दिया है। जो श्री चैतन्य महापुरुष ने दिया है वो कारण दे रहे हैं, बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण का अर्थ ये होता है हमारे अंदर योग्यता हो या ना हो फिर भी हमें मिलेगा, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन महाप्रभु बिना किसी कारण के हमें कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। हाँ, हम लेना चाहते हैं नहीं, वो हमारे ऊपर है, वो देना जरूर चाहते हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए इसको अयुति की कृपा कहते हैं। और लेना नहीं भी चाहते फिर भी देना चाहते हैं, ये है वास्तव में अयुति की कृपा। असली इसका अर्थ यह है, आप नहीं भी लेना चाहते हैं आपको देंगे, क्योंकि महाप्रभु जानते हैं इसी में आपका लाभ है। तो इसको कहते हैं वदान्याय होना, उदार होने का अर्थ यह है। आप नहीं चाहते इंजेक्शन लगवाना फिर भी आपको इंजेक्शन लगाएं, तो इसको कहते हैं कृपा। तो उदारता भगवान में है। तो जो ब्रज प्रेम का जो वितरण नहीं कर पाए थे भगवान कृष्ण, नहीं कर पाए थे, खासकर जो श्रीमती राधारानी की सेवा का अवसर जो प्रदान करना था वो उन्होंने महाप्रभु के रूप में आकर ही किया। कलयुग के पति जीवों को ये मौका मिला जो सतयुग में नहीं मिला। सतयुग में अधिकांश जो लोग थे वो परमहंस हुआ करते थे, लेकिन उस समय ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और कलयुग में लोग पतित लोग हैं फिर भी अवसर ही प्राप्त हो रहा है। किस कारण से? केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण से। कलयुग में भी, सतयुग में भी हरे कृष्ण महामंत्र था, हरि नाम तो हमेशा रहता है, लेकिन उनको क्यों नहीं लाभ मिला? क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर कलयुग में इस महामंत्र का वितरण किया है, इस संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया है। स्वयं अपने आप कलयुग के प्रति जीवों को ये हरि नाम प्रदान किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बदन्याय होने का अर्थ यही है। और भक्त भी इसी प्रकार के होते हैं जैसे प्रभुपाद हमारे, बिना किसी कारण के अकारण प्रभुपाद विदेश चले गए और अयोध्या की कृपा प्रदान कर रहे हैं, बिना किसी कारण के कृपा दे रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान जीव होता है जिसके ऊपर गुरु कृष्ण की कृपा होती है। तो प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद हम लोग भाग्यवान है ना, प्रभुपाद का नहीं, भाग्यवान तो मैंने बनाया है, आप लोग भाग्यवान भी नहीं थे। तो हरीश्वरी प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद इस तरह से कह रहे थे कि प्रभुपाद ने कहा कि मैंने भाग्यवान बनाया। तो महाभागवत का दर्शन करने मात्र से ही लोगों को अयोध्या की कृपा प्राप्त हो जाती है और उनकी वाणी सुनने से और सुकृति जागृत करते हैं, जिससे उनके हृदय में श्रद्धा जागृत होती है कृष्ण भक्ति के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद उनके शिष्य है और विश्वभर में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ये अयोध्या की कृपा का वितरण कर रहे हैं बिना किसी कारण के। जैसे कई हमारे महाराज लोग हैं वो ऐसे ऐसे देश में जाकर प्रचार कर रहे हैं जहां पर ना कोई निमंत्रण है ना पता है कि वहां जाकर क्या होगा, फिर भी जा रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ है कि प्रभुपाद को खुश करना है, गुरु को खुश करना है। उदारता ये भी कहा गया कि जब भगवान जिस द्वारका में रह रहे थे तो उन्होंने 16,108 रुपयों में अपना विस्तार किया था। हर हर विस्तार एक एक रानी के साथ हर महल में निवास करता था। कृष्ण उन महलों में अपनी रानियों के साथ न केवल सुखपूर्वक रह रहे थे अपितु वे हर महल से सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से पूरी तरह सुसज्जित 13,084 गायों के समूह का दान भी दे रहे थे। कृष्ण के 16,108 महलों में से हर एक से नित्य इतनी गौएं दान में दी जाती थी, जिसका अर्थ हुआ 16,108 ये मल्टीप्लाई करिए 13,084 से गाय प्रतिदिन दान किया जाता था। इतनी बड़ी संख्या में दान दी गई गौएं के मूल्य का अनुमान लगा पाना संभव नहीं, किंतु जब कृष्ण द्वारका में शासन कर रहे थे तो उनका यही दैनिक कार्यक्रम था, ये रोज का कार्यक्रम था कि इतनी गायों का वो वितरण करते थे, ब्राह्मणों में दान देते थे। यानी कि स्वर लोग का ऐश्वर्य भी फीका पड़ गया द्वारका के ऐश्वर्य के सामने। भगवान जब अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो कौन उनका मुकाबला कर सकता है? जो वो दान करते हैं तो कौन उनका मुकाबला कर सकता है? ये उनकी धारणा है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और भक्त लोग इस उदारता का भाव प्रकट करते हैं ग्रंथों का वितरण करके। श्री प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण करते हैं तो क्या देते हैं, फिर सब लोगों को मौका देते हैं कि प्रभुपाद का संग प्राप्त हो इन ग्रंथों को पढ़कर। तो भक्त बड़े उदार होते हैं इस तरह से, इसलिए कष्ट उठा के इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और खतरा लेते हैं। उदार उदार हृदय होना चाहिए। इसलिए उदार हृदय का मतलब यह है कि संकुचित नहीं होनी चाहिए हमारी चेतना। हमारी जो चेतना है उसका विकास का पता तब चलेगा जब हम इस गुण को अर्जित कर लेंगे कि हमारे अंदर कितना उदार है, उदारता है हमारे अंदर। एकदम सोचते हैं कि नहीं, हम केवल यही प्रचार करेंगे, बस ये ठीक है, सब कुछ जो चल रहा है अच्छा चल रहा है बस। तो ये उदार हृदय नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर क्षण ये सोचते हैं कि कैसे हम इस प्रचार को बढ़ाएं, कैसे अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण भावना में जोड़े। दिन रात वो यही चिंतन करते हैं। और शुद्ध भक्त जब चिंतन करते हैं तो भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। शुद्ध भक्त की इच्छा से ही ये कृष्ण भावना का आंदोलन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि भगवान जो है कृपा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं किसी जीव के ऊपर। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने कहा है अपनी टीका में, माधुरी कादंबरी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो जो भी कृपा करते हैं वो भक्त के माध्यम से करते हैं। और कौन से भक्त? एक भक्त जो मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी भक्त जो है उसको ये उपलब्धि प्राप्त होती है कि वो कृपा बांटे, कृपा का वितरण करें। तो इसलिए ऐसे वैष्णव जो होते हैं वो प्रचार के कार्यक्रम में लगते हैं। तो ये प्रचार करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, जब तक हम संकीर्तन में भाग नहीं लेंगे, हमारा हृदय कभी भी विशाल नहीं बन सकता, उदार नहीं बन सकता है। अपने ही में रहना ये एक स्वार्थ का जीवन है। केवल अपने ही भजन की चिंतन का चिंता करना ये बड़ा अन्यायता नहीं है, उदारता नहीं है कि हमारा सोलह माला हो गया, हमारा भजन हो गया, हमने अध्ययन कर लिया, हमारी मंगल आरती हो गई, बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं। उदार का मतलब है कि हमें और लोगों की भी चिंता करनी चाहिए और भक्तों की भी चिंता करनी चाहिए और जो जीव भटक रहे हैं संसार में उनकी भी चिंता करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जिनके पास कृष्ण भक्ति का या कृष्ण भावना का यह अनमोल भेंट नहीं है। कौन उनको जाके बताएगा? कमरे में बैठकर यहां पर बहुत ही सुलभ वातावरण में बैठकर हम लोग खंडन कर सकते हैं मायावादियों का, या हम खंडन कर सकते हैं कि उन कर्मियों का जो कृष्ण भक्ति में नहीं लग रहे हैं, बड़ा आसान है। लेकिन उदार होने का मतलब यह नहीं है, उदार होने का मतलब केवल चर्चा करना नहीं है, उदार होने का मतलब है कि स्वयं जाना पड़ेगा उनके पास उनकी सहायता के लिए, रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि जब जंगल में आग लग जाती है तो वहां जो जीव जंतु होते हैं उनसे आशा ना करें कि वो बाहर निकल पाएंगे, किसी को बाहर से आना पड़ेगा उनको बचाने के लिए। और बाहर के लोग केवल खंडन करेंगे, देखो जंगल में आग लग गई है, कैसे लोग अंदर जल रहे हैं, तो फायदा है क्या ऐसे बोलने का? अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आग से उनको रक्षा मिले, रक्षा से आग से बचे, तो आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जंगल की आग तो हम नहीं बुझा सकते हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हम कुछ व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। इसी तरह से संसार दावनल का मतलब भी यही है। इस संसार में हर जीव जो है वो फंसा हुआ है, तो उनको बचाने के लिए भक्त को चाहिए कि वो बाहर जाए, ये उदारता है। इसलिए भगवान भी ये कह रहे हैं भगवद्गीता, यह इदम परमं भूयं मद भक्ति शोभिदाश्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामेव संशया। हालांकि इस श्लोक में भगवान ने तो बोला है कि मेरे भक्तों को जो ये रहस्य बताता है वो सबसे प्रिय है, अगर इस श्लोक का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त क्योंकि इतने उदार होते हैं उनके हृदय में इतनी करुणा होती है कि वो एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि वो खतरा लेते हैं कि भगवद गीता का अवतरण करने जाते हैं, लोगों को भगवद गीता का संदेश देने जाते हैं। उनको पता है कि नहीं, भगवान ने मना किया है, ऐसे जो लोग तपस्वी नहीं है जो ईर्ष्या करते हैं उनको ये वह ज्ञान मत दो, है कि नहीं। भगवान इससे पीछे वाले श्लोक में ही बोल रहे हैं, हालांकि पहले वाला श्लोक हम पढ़ते नहीं है ना, किसी को सुनाते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने ही बोला है, ये ज्ञान उनको ना बताना जो द्वेष करते हैं, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त है उनको उनको बताओ। ऐसे जो बताता है वो बड़ा प्रिय है मुझे, हम तो सबको बताते हैं, हम तो देख नहीं देखते कौन तपस्वी है कौन तपस्वी नहीं है, हम सबको गीता देना चाहते हैं। तो भक्त जो है ये रिस्क लेता है, उसका कारण ये है, भगवान ने मना इसलिए किया है क्योंकि संभावना ये रहती है कि जो लोग हैं उस भक्त के प्रति अपराध करेंगे। किसी नास्तिक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो भगवान से द्वेष करता है, उसको अगर आप किसी ग्रंथ का प्रचार करोगे तो संभावना है कि वो आपको आप किसी ना किसी प्रकार से दुख देगा, आपको अपशब्द बोलेगा, तो ये भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, इस कारण से भगवान मना कर रहे हैं। लेकिन भक्त जो है उस बात की चिंता न करके, वो क्योंकि चाहता है कि भगवान का गुणगान हो, प्रचार बढ़े, तो ये वो खतरा लेता है। धार्मिक अगला है, धार्मिक ये 30वां गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, 30th क्वालिटी। जब कोई व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित धर्म के नियमों का पालन करता है और अन्यों को भी उन्हीं नियमों की शिक्षा देता है तो वह धार्मिक कहलाता है। किसी भी पंथ को स्वीकार कर लेना मात्र ही धार्मिकता की निशानी नहीं होती। मनुष्य को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए और अपने निजी उदाहरण से अन्य को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक माना जाना चाहिए। जब कृष्ण धराधाम में थे तो अधर्म का नाम ना था। इस प्रसंग में नारद मुनि ने एक बार हंसी में कृष्ण को इस तरह संबोधित किया, हे ग्वाल बालों के प्रभु, आपके बैल, बैल धर्म का प्रतीक है, चरागाहों में चरते समय और अपने चार पैरों पर चलते हुए अधर्म रूपी घास का सफाया कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से धार्मिक सिद्धांतों की ऐसी देखरेख की जाती थी कि धार्मिक कार्यों के लिए स्थान ही नहीं रह पाता। कहा जाता है कि कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञ करते रहते थे जिनमें स्वर्गलोक के देवताओं को आमंत्रित करते थे, जिससे ये देवता अपनी प्रियतमाओं से दूर हो जाते थे। इसलिए पति योग से खिन्न देव पत्नियां कलयुग में प्रकट होने वाले कृष्ण के नवे अवतार भगवान बुद्ध के आविर्भाव के लिए प्रार्थना करने लगी। कृष्ण हमेशा यज्ञ में व्यस्त रहते थे, तो क्योंकि वो यज्ञ करते थे तो देवता लोग स्वर्ग लोग छोड़ के जाते थे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। इसलिए जो देव स्त्रियां हैं, देवताओं की जो पत्नियां हैं, वो बहुत नाराज रहते थे कि ये देवता लोग सब चले जाते हैं, स्वर्ग लोग छोड़ के चले जाते हैं बार बार। तो नवा जो अवतार है या भगवान का बुद्ध का जो अवतार है जो कलयुग में होगा, उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं सब, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या करेंगे, आकर सारे यज्ञ बंद करा देंगे, और जब यज्ञ बंद होंगे तो कोई देवता जाएंगे नहीं। इसी कारण से देवता आते नहीं है कलयुग में। कई बार प्रश्न पूछते हैं ना कि क्या कारण है कि देवता लोग तो आते नहीं, यज्ञ नहीं होते, भगवान बुद्ध ने सारे यज्ञ बंद करा दिए। तो ये सब जो है भगवान बुद्ध के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी क्यों ये पूछा जाता है कि आजकल देवतागण स्वर्गलोक में इधरालोक पर क्यों नहीं आते, इसका सीधा साधा उत्तर यही है कि जब से भगवान बुद्ध प्रकट हुए और पशुवध रोकने के लिए धरा पर यज्ञ को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, तब से यज्ञ करने की विधि बंद हो गई, अतः देवतागण यहां आने की परवाह नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, ये है 31वां गुण, 31st क्वालिटी। ऐसा व्यक्ति जो सैन्य कार्यों में अत्यंत उत्साही एवं विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में दक्ष होता है शूरवीर कहलाता है। युद्ध के समय कृष्ण की वीरता के विषय में निम्नलिखित कथन आता है, हे शत्रुओं के हंता, जिस प्रकार हाथी सरोवर में स्नान करते समय अपनी सूंड से कमल नालों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपने हाथी के सूंड जैसे अपने हाथों को चलाकर कमल तुल्य शत्रु को मार डाला है। श्री कृष्ण के हथियार चालन की दक्षता के विषय में कहा जाता है कि जब जरासंध ने अपने सैनिकों की 13 टुकड़ियों के साथ कृष्ण की सेना पर आक्रमण कर दिया तो वह कृष्ण की सेना के एक भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंचा पाया। 13 टुकड़ियां लेके आया अपनी सेना की, फिर भी एक भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंचा पाया। ये कृष्ण के दक्ष सैन्य प्रशिक्षण का के कारण हुआ। सैन्य कला के इतिहास में अद्वितीय है। और हम देखते हैं भगवान की लीला में बाल्यकाल से ही भगवान ने तो अस्त्र शस्त्रों का भी उपयोग नहीं किया, अपने शरीर से ही, अपने हाथ से ही, जैसे यहां लिखा है पहले, अपने हाथ से ही लोगों को मारा। वृंदावन में कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग हुआ ही नहीं। द्वारका में कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन वृंदावन में तो बिल्कुल हाथ से ही सबको मारा। प्रारंभ से देखिए, पूतना का वध किया और उसके बाद फिर हम देखते हैं तृणावत का व्रत हुआ, और उसके बाद उससे पहले शट्टासुर का व्रत हुआ, उसका तृणावत का व्रत किया, तृणावत का व्रत किया, उसके बाद फिर आगे चलकर दो अर्जुन वृक्ष थे उनका उद्धार किया, वो भी भगवान ने हाथों से किया, हाथों से उन वृक्षों को नीचे गिराया। और उसके बाद आगे कर आगे चले अगासुर का वध किया, वत्सासुर का वध हुआ, बकासुर का वध हुआ, देनक धेनुकासुर का वध हुआ, ये सब का हाथ से ही वध किया है, कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं कर कृष्ण ने। और सबसे बड़ी बात है, इन सब को मारने के लिए कृष्ण को कोई विराट रूप धारण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान जिस रूप में थे उसी रूप में रहकर इनका वध कर रहे थे। ये नहीं कि उनको हाथ लंबा करना पड़ा या आकार को बड़ा करना पड़ा, जो आकार था उसी में मार दिया। जैसे वो था केशी राक्षस था, घोड़े के रूप में आया था, तो क्या किया कृष्ण ने, क्या किया, उसके मुंह के अंदर हाथ डाल दिया। बकासुर को क्या किया, ऐसे ही मारा। बकासुर ने अपनी चोंच खोली, मुंह खोला और कृष्ण के अंदर निकल लिया, और जैसे ही अंदर निकला तो ऐसा लगा कि गरम गरम लोहा है, उसको बहुत तपने लगाओ, ऐसा लगा कि अभी जल के मर जाएगा। तो उसने क्या किया, बाहर निकल दिया, बाहर निकाल लिया एकदम से कृष्ण को, जैसे उल्टी कर दी हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों के लिए तो कृष्ण बड़े मीठे होते हैं मिश्री के समान, लेकिन अभक्तों के लिए इस तरह से कड़वे होते हैं। तो इस प्रकार भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के ही सबको मार दिए थे। अगासुर को भी मारा तो सीधा अंदर चले गए और फाड़ डाला। तो इस तरह आप देखते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, और ये सब बाल लीलाएं जो की थी भगवान कृष्ण ने। मथुरा में भी ऐसे ही किया था, धोबी को मारा था, और वो कुबलिया पीठ जो हाथी था, जो कंस का इतना बड़ा हाथी था, है ना, राजा का हाथी था, बड़ा ही खतरनाक हाथी, और बड़ी आसानी से मार दिया उसको। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान को अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, यहां पर धारण से ले दिया जा रहा है। जिस प्रकार हाथी सरोवर में स्नान करते समय अपनी सूंड से कमल नालों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपने हाथी के सूंड जैसे अपने हाथों को चलाकर कमल तुल्य शत्रुओं को मार डाला, यह भगवान की महानता है। और कोई अस्त्र शस्त्र ना भी उठाए, हाथ नहीं भी चलाए, फिर भी उनकी विजय हो जाएगी। वो वाणी का अस्त्र चलाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में तो भगवान ने प्रण लिया कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पहले भी उठाते नहीं थे वो तो, और वृंदावन में भी नहीं उठाया था उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र, तो यहां क्यों अपना समय बर्बाद करें उठाएं। तो उन्होंने कहा मैं तो सारथी हूं, मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं वचनबद्ध हूं, तुमने तो गलत फैसला किया है, दुर्योधन देखो तो सारी नारायणी से ले गया, अब तुम्हारा क्या होगा, वो तो शक्ति को ले गया है, शक्तिमान तो मेरे साथ है। अर्जुन ये कहना चाह रहे कि शक्ति को ही ले गया ना, आपकी शक्ति को ले गया है, लेकिन शक्तिमान तो मेरे साथ है, फिर किस बात की चिंता है। तो भगवान जो है अपनी वाणी के द्वारा ही, यानी कि बार बार जिस प्रकार से अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे थे युद्ध में, उसी से ही अर्जुन की विजय हो रही थी, उसी से अर्जुन सबको मार रहे थे। तो ये भगवान, इसलिए भगवान के बारे में बताया गया शूरवीर हैं, दयालु। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाता वह करुण या दयालु कहलाता है। दुखी लोगों के प्रति कृष्ण की दया का प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने मगधेन्द्र द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को रिहा कराया। मरते समय भीष्म पितामह ने कृष्ण की जो स्तुति की उसमें उन्हें ऐसा सूर्य बतलाया जो अंधकार का विनाश कर देता है। मगधेन्द्र द्वारा बंदी बनाए गए राजा काल कोठरियों में रखे गए थे। जब कृष्ण वहां प्रकट हुए तो सारा अंधकार तुरंत दूर हो गया मानो सूर्य उदय हुआ हो। दूसरे शब्दों में यद्यपि मगधेन्द्र ने अनेकानेक राजाओं को बंदी बना लिया था किंतु कृष्ण ने जाते ही उन्हें मुक्त कर दिया। कृष्ण दयावशी राजाओं को बंधन से मुक्त किया था। कृष्ण की करुणा तभी प्रकट हुई जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए थे जो उनके शरीर में बाण बेंध कर बनाए गए थे। इस तरह लेटे हुए वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और तभी कृष्ण वहां प्रकट हुए। भीष्म की दयनीय दशा देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वे अश्रुपात ही नहीं कर रहे थे, अभी तो करुणावश वे अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठे। अतः भक्तगण सीधे कृष्ण को नमस्कार न करके उनके करुण स्वभाव को नमस्कार करते हैं। वसुधा परमेश्वर होने के कारण कृष्ण तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है किंतु भक्तगण उनकी करुणा का लाभ उठाकर उनकी दया के लिए सदैव राधा रानी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि राधा रानी साक्षात कृष्ण की करुणा है। तो यह करुणा कौन है? करुणा करुणामयी। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं करुणा कुरुमयी करुणा भरीते। तो श्रीमती राधारानी करुणा से भरी हुई है। तो श्री कृष्ण अगर करुणा प्रकट करते हैं तो श्रीमती राधारानी के माध्यम से प्रकट करते हैं और सबसे ज्यादा करुणा किसमें है? श्री चैतन्य महाप्रभु में। तो श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधारानी का भाव स्वीकार करके आते हैं तो सबसे अधिक करुणा उनके हृदय में होती है। तो जैसे पहले उनके बारे में बताया गया उदार वदन्याय करुणा ये सारे गुण लगभग एक जैसे हैं। करुणा युक्त की कृपा तो महाप्रभु के लीला में देखते हैं किस तरह से उन्होंने करुणा प्रकट की है ना। महाप्रभु ने प्रारंभ से ही करुणा प्रकट की। सबसे बड़ी करुणा क्या है महाप्रभु की? उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया और चांद कांजी जिसने अपने सैनिकों को भेजा था क्योंकि हिंदू ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण थे जिन्होंने जाकर चांदकाजी को जाकर कंप्लेंट किया। क्या किया? क्या बोला कि ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, ऐसे जोर जोर से नामों को उच्चारण करते हैं, इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। यानी कि मुसलमान लोग खुद नहीं विरोध कर रहे थे, ये कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे तथा जो हिंदू कर्मकांडी ब्राह्मण थे उन्होंने विरोध किया। उनके कहने पर चांदकाजी ने भेजा सैनिक। प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक जगह पे और इस तरह चांद काजी ने भेजा वहां जाकर उन्होंने मृदंग तोड़े, उनके सैनिकों ने मृदंग तोड़े, भक्तों को भी पीटा। और जब महाप्रभु आए तो बहुत क्रोधित हुए। महाप्रभु इतना क्रोध आया कि उन्होंने कहा चलो हम सब मिलकर चलते हैं चांद काजी के पास। तो 100,000 महाप्रभु ने 100,000 लोगों को इकट्ठा किया। प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु तो 100,000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। एक साथ 100,000 लोगों को इकट्ठा करना संकीर्तन के लिए, ये चैतन्य महापुरुष हैं भगवान। तो 100,000 लोगों को इकट्ठा करके चैतन्य महापुरुष किसके घर पे गए? चांद काजी के घर पर गए। ये सबसे बड़ी करुणा है महापुरुष की कि चांद काजी का उद्धार किया महापुरुष ने, इतना बड़ा संकीर्तन का आयोजन करके और चांद काजी के घर पर जाकर सब मशालों को लेकर, अंधेरा था, सायंकाल हो चुका था, सब चांद काजी के घर पर गए और महाप्रभु ने चांद काजी के ऊपर विशेष कृपा की। तो ये मन बातों का अच्छी तरह समझना है कि महाप्रभु की कृपा किस प्रकार से हुई। देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद थे अमोगा, जो हमेशा द्वेष करते थे और निंदा करते थे, महाप्रभु को तक नहीं छोड़ा। जब महाप्रभु प्रसाद लेने आए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे तो सार्वभौम भट्टाचार्य बाहर दरवाजे के पास खड़े थे छड़ी लेकर कि कहीं अमोघ अंदर ना घुस जाए और फिर महाप्रभु की निंदा करेगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बाहर खड़े थे, फिर देखा कि लगभग प्रसाद तैयार है और महाप्रभु प्रसाद लेंगे तो अंदर गए और वहां जाकर देखा, अंदर गए तो अमोघ अंदर आ गया। रसोई में गए सार्वभौम भट्टाचार्य देखने कि सब कुछ तैयार है कि नहीं। तो महाप्रभु प्रसाद लेना शुरू किए थे, तो अमोवा उसी समय अंदर आ गया मौका देखकर, और महाप्रभु को देखकर बोलता, अरे आप तो सन्यासियों को इतना सारा खा रहे हो। तो महाप्रभु जैसे देखा तो महाप्रभु जो है प्रसाद लेना बंद कर दिया, महाप्रभु कुछ कहा नहीं। तो सारो भट्टाचार्य को बड़ा गुस्सा आया और सारो भट्टाचार्य जो है छड़ी लेकर भागे मौका के पीछे, बहुत दूर तक भागे, लेकिन पीछा करते करते थक गए क्योंकि तो वृद्ध थे, वो तेजी से भाग गया। सारो भट्टाचार्य कहते हैं अच्छा है कि जो है मेरी बेटी विधवा हो जाए। तो सारो भट्टाचार्य बहुत गुस्से में थे, लेकिन महाप्रभु के हृदय में दया थी, करुणा थी। उन्हें कहा जो भी हो, अमोघा सारो भट्टाचार्य का दामाद है, क्योंकि अमोघा सारो भट्टाचार्य के रिश्ते में था, इस कारण से महाप्रभु अमोघा की रक्षा के लिए अमोघा के घर पे गए। अमोघा को 3 दिन के बाद हैजा हो गया, अपराध किया ना, हैजा हो गया। तो महाप्रभु की छाती में हाथ रखे कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे हृदय में द्वेष कौन सा है। तो इस तरह अमोघा को महाप्रभु ठीक किया, और जैसे ही महाप्रभु को हरिनाम लेने के लिए कहा, अमोघा जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया और कीर्तन करने लगा, नृत्य करने लगा। तो ये दया है चैतन्य महाप्रभु की, है ना। तो महाप्रभु अति की कृपा करते हैं बिना किसी कारण के। इसी तरह से हम देखते हैं कि दया प्रकट किया नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई के ऊपर, है ना। महाप्रभु तो केवल इसलिए वो क्रोधित हो गए थे क्योंकि नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया, अन्यथा महाप्रभु ने ही सबसे पहले कहा था कि जाओ ये पापी से पापी लोग हैं, उनका उद्धार करो। नित्यानंद मोहनदास ठाकुर, उन्होंने क्या फैसला किया कि जो सबसे ज्यादा पापी है उनका उद्धार सबसे पहले करेंगे। तो इससे क्या महाप्रभु का यश फैलेगा। तो नवदीप में सबसे ज्यादा पापी को उन्होंने जगह बनाई थी, तो उनका उद्धार करने के लिए गए। पहली बार आए तो भगा दिया उन्होंने, है ना। दूसरी बार जब गए तो फिर नित्यानंद के सर पर मारी मटकी मारी, नित्यानंद के सर से खून निकलने लगा। तो जाके बताया किसी ने, हरदास ठाकुर ने, महापुर चले आए, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल दिया। नित्यानंद ने महापुर के चरण पकड़े कि महापुर आप तो पाप को खत्म करने आए, पापियों को नहीं, ये कलयुग है, द्वापर युग नहीं है। तो महापुर ने फिर उनको क्षमा किया नित्यानंद प्रभु के कहने पर, और ये कहा कि आगे से अपराध नहीं करूं। तो ये सब दया ही है महाप्रभु की, जितने महाप्रभु की दया ही है। तो इस तरह से महाप्रभु की लीला में कई जगह पर इस प्रकार की महाप्रभु की दया देख सकते हैं। झारखंड के जंगलों में जा रहे हैं, पशु को भी नृत्य करा रहे हैं, उनको भी कीर्तन करा रहे हैं, है ना। और आपस में जो खूंखार जंगली जानवर है वो भी आपस में मिलकर नृत्य कर रहे हैं, शेर और हिरण भी मिलकर आपस में पंजा से पंजा मिलाकर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब महाप्रभु की अयुत की कृपा है, दया उनकी करुणा है। तो भक्त को भी बड़ा दयालु होना चाहिए। दया जो है ये भक्त का एक बहुत विशेष गुण है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में दया नहीं होगी हम प्रचार नहीं कर सकते। नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवन, यही छाड़ी धर्म नहीं सुन सनातन। तो दया बहुत आवश्यक। श्री रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने श्रीपाद वल्लभाचार्य को ठीक करने का प्रयास किया, हाँ उनको शिक्षा देने का प्रयास किया। क्या शिक्षा उन्होंने दी? श्रीपाद वल्लभाचार्य ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में, जैसे पहले भी हमने बताया था इसके बारे में, तो उस ग्रंथ में क्या लिखा था, एक जगह उन्होंने देखा, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि आपने ये मुक्ति को पिशाची क्यों कहा है, मुक्ति कैसे पिशाची हो सकती है। तो श्रील रूप गोस्वामी चुपचाप सुनते रहे और श्रीपाद वल्लभाचार्य उसके चले गए। तो श्रील जी गोस्वामी ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, वो गुरुदेव को इस तरह से कहकर चले गए, मुझे जाके बताना चाहिए। तो श्रील जी गोस्वामी गए, जो स्नान करके निकले थे बाहर ही यमुना जी के पास मिले, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने गलत नहीं लिखा है, उन्होंने तो मुक्ति की जो स्प्रिया है, इच्छा है, उसको पिशाची बोला है, मुक्ति को पिशाची नहीं बोला है। तो वल्लभाचार्य, श्रीपाद वल्लभाचार्य सब सुने, उनको बड़ा अच्छा लगा, सोचा बढ़िया अजीब सी बात है, तो इतना विद्वान है इतनी छोटी उम्र में। उस समय श्री जी गोस्वामी केवल 19 साल के थे और श्रीपाद वल्लभाचार्य होंगे कम से कम 65 साल के, बहुत वरिष्ठ वैष्णव ब्राह्मण थे। और श्री जी गोस्वामी उनको ठीक कर रहे थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य आए, श्री गोस्वामी आके बताया उन्होंने कि आपका शिष्य जो है बहुत होनहार है, बहुत तेज है, प्रतिभाशाली है, मुझे क्षमा करिए कि मैंने गलती निकाली, वास्तव में आपने सही लिखा है। तो ऐसा वो बोल के चले गए, उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया और चुपचाप चले गए। तो श्री रघु गोस्वामी ने श्री जी गोस्वामी को बुलाया और उनको कहा कि क्यों ऐसा क्यों किया तुमने, जब उनको पता चला। उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्रज में रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हें बड़ा अपना विद्वत्ता का अहंकार है, तो जाओ ब्रज से बाहर जाओ। तो वृंदावन से बाहर कर दिया, तो वृंदावन से बाहर चले गए और एक घाट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उस घाट का नाम, उस घाट के पास श्री जी गोस्वामी रहने लगे, ऐसे गुफा में जहां पर मगरमच्छ आता जाता रहता था उसके पास ही निकट ही रहने लगे। और वहां पर वो क्या करते थे, कभी कभी रेती से बाटी बनाकर उसी को ही खाते थे, अयाचक वृत्ति के हो गए। तो एक श्री सनातन गोस्वामी वो वहां से गुजर रहे थे, मधुकरी कर रहे थे, तो एक घर में गए तो वहां पे एक ब्रजवासी ने कहा कि बाबा देखो आप तो मधुकरी करके सब कुछ ले लेते हैं, मिल जाता आपको, लेकिन बाबा वहां पर भी रहते हैं वो तो मांगता भी नहीं है कुछ, जो मिलता है उसी उसको ले लेता है बस। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये ऐसा कौन है, ये बहुत बड़े संत होंगे कोई। बाद में जब ढूंढा देखा तो देखा श्री गोस्वामी वहां लेटे हुए हैं और बिल्कुल अधमरे से हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं। तो सनातन गोस्वामी देखकर हैरान हो गए, बोले क्या हुआ। वो नहीं बोलते, मैंने गुरु के प्रति अपराध किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो स्वयं को अपना आपका अपराधी मान रहे थे श्री गोस्वामी। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं चलो मेरे साथ, तुम चिंता मत करो मेरे साथ चलो। तो रूप गोस्वामी कथा कर रहे थे तो वही बता रहे थे, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, ये धर्म के श्रेष्ठ तीन नियम है। तो बाद में फिर जब मिले सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी को पूछते हैं कि अभी आपने बताया कि धर्म के श्रेष्ठ तीन नियम है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, आपका अपना भी तो एक जीव है ना, उसके प्रति दया कहां गई आपकी, उसको तो आपने निकाल दिया। उसने कहा हां, तभी मैं सोच रहा हूं कि मैं क्यों ग्रंथ नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि रूप गोस्वामी निकालने के बाद वास्तव में वो भूल गए थे, क्योंकि अंदर से तो कोई ऐसा क्रोध नहीं था उनको, लेकिन आदर्श स्थापित करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। तो फिर वो ढूंढने लगे कहां है कहां है, बोले ये आपका जीव। तो बाद में बताते हैं श्री रघु गोस्वामी देखकर इतने दुखी हुए, श्री जी गोस्वामी को देखकर, श्री रघु गोस्वामी ने श्री जी गोस्वामी खुद सेवा की, उनका इलाज किया, उनको खुद प्रसाद खिलाया और साथ में श्री रघु गोस्वामी ने उनके लिए एक विग्रह बनाकर दिया, जो बाद में श्री जी गोस्वामी खुद सेवा करने लगे दामोदर के नाम से। साथ में फिर राधारानी भी स्थापित हुए, राधा दामोदर की सेवा करने लगे श्री जी गोस्वामी। तो ये जो दामोदर का जो विग्रह है अपना यहां जयपुर में, जो मूल विग्रह है वो स्वयं श्री रूप गोस्वामी के द्वारा बनाया गया, अपने हाथों के द्वारा बनाकर श्री रूप गोस्वामी ने श्री जी गोस्वामी को दिया। इसको कहते हैं दया, ये दया देखिए। तो गुरु हमेशा दयालु होते हैं, गुरु के हृदय हमेशा दया रहती है अपने शिष्य के प्रति, लेकिन शिष्य को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु हमारे साथ कठोर क्यों है, क्योंकि वो हमारा चिंतन करते हैं सदैव, हमारा भला चाहते हैं, इस कारण से कभी कभी हमें डांटते भी हैं। नहीं तो अगर गुरु नहीं डांटेंगे, गुरु अगर गलती नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा फिर, और सब हमारी प्रशंसा ही करेंगे और गलती कौन देखेगा, और गलती नहीं हम बताएगा कोई हमें तो हमारे अंदर नम्रता कहां से आएगी। तो इसलिए दया जो है ये बहुत बड़ा गुण है, वैष्णव में होता है गुण। और ये गुण हमें भी जागृत करना चाहिए। बाहर इतने लोग परेशान हैं संसार में, वही बात यहां पर आ गई, करुणा वाली बात आ गई, दया दिखानी चाहिए बाहर जाके। प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, अभी जैसे जाते हैं भक्त लोग रोज सड़क पर जाकर पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, ये तो दया है। नहीं तो लोग निश्चित रूप से नरक में जाएंगे, कौन बचाएगा उनको, तो भक्त लोग जाके बचाते हैं, ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। अभी फिर आने वाले बुक मैराथन में सबको मौका मिलेगा, ये दया की भावना प्रकट करने का मौका सबको मिलेगा। जब दया हम लोग प्रकट करेंगे तो हमारे हृदय से द्वेष निकल जाएगा। जहां करुणा होती है, जहां दया होती है, वहां द्वेष का कोई स्थान नहीं होता है, भक्ति ठाकुर ने कहा है एक जगह पर। और जहां द्वेष होता है वहां दया नहीं होती है, वहां करुणा नहीं होती है। तो दया दिखाने का सबसे अच्छा मौका मिल रहा है इस बार, तो कार्तिक के मास में ही हम लोग शुरू कर देंगे बुक मैराथन। तो हमें श्रीमती राधारानी की दया की याचना करनी चाहिए कि हमारे ऊपर भी दया करें, कि ताकि हम दूसरों के ऊपर दया कर सके, है ना। तो कार्तिकी देवी जो है, श्रीमती राधारानी को कार्तिकी देवी कहा गया है। तो कार्तिकी इसलिए कहा गया है क्योंकि उस मास से नाम पड़ा है, कार्तिक के मास का नाम पड़ा है। अधिष्ठात्री देवी है कार्तिक मास की जो है श्रीमती राधारानी, इसलिए साधारण जो अपराध है वो नहीं लगते हैं। जो राधा कृष्ण लेते हैं अपराध, या विग्रह के प्रति अपराध होता है, या सेवा अपराध होते हैं जो और महीनों में लगता है, वो अपराध इतने लेते नहीं है इस महीने। इस कारण से हम जो भी भक्ति का कोई कार्य करते हैं उसमें आनंद आता है। अब देखेंगे कार्तिक के महीने में कोई भक्त को लगेगा बड़ा अच्छा लगता है, डामर अष्टकम का पाठ करना, दीप दान करना, मंगल आरती में उठना, सब अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय अपराध जो है गिने नहीं जाते हैं। ये एक विशेष कृपा है, श्रीमती राधारानी की दया है। तो श्रीमती राधारानी जो है सबसे ज्यादा दयालु है, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है। तो इस कारण से ये कार्तिक मास का पूरा लाभ उठाना चाहिए, और इस मास का लाभ उठाकर आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करके हमें इन ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथों का वितरण जो है ये श्रीमती राधारानी के लिए सेवा है। ग्रंथों का जो वितरण कर रहे हैं वो श्रीमती राधारानी की सेवा कर रहे हैं प्रत्यक्ष। श्रीमती राधारानी क्या कर रहे हैं, सभी जीवात्माओं को कृष्ण से मिला रहे हैं। जो जो भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, जो शुद्ध भक्ति के धरातल पर आते हैं, राधारानी उनको मिलाते हैं कृष्ण से। तो जब आप ग्रंथों का वितरण करते हैं, जिसको भी ग्रंथ देते हैं उसको कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण का परिचय देते हैं आप, तो आप राधारानी का ही तो कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये जो ग्रंथों का वितरण है ये श्रीमती राधारानी की सेवा है। तो जो राधारानी के प्रिय बनना चाहते हैं उनको इस मैराथन में भाग लेना चाहिए, अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम सिद्धांतों को समझेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो और उत्साह हमारा बढ़ेगा। भावुकता के कारण ही नहीं, केवल सिद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। इसलिए प्रत्येक भक्त को जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है, चर या अचर है, उसको ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है। पुजारी है, बाहर कोई रहते हैं, कहीं भी कोई किसी अवस्था में है, लेकिन इस महीने जो है पुस्तकों का वितरण करना ही पड़ेगा। बाकी महीने नहीं अगर करते हैं तो पूरे साल करना चाहिए, कुछ भक्त पूरे साल करते हैं, लेकिन पूरे साल अगर हमने दया नहीं दिखाई है तो ये मौका है इस महीने दया दिखाने का। तो इस बार तो 26-25 नवंबर तक कार्तिक है, लेकिन हम 20 नवंबर से शुरू करते हैं, इसलिए कार्तिक के मास में शुरू होगा इस बार पुस्तक वितरण हमारा। तो आप लोग तैयार रहिए, कार्तिक मास के कारण जो है हम लोग ज्यादा जो है अंतर्मुखी ना हो जाए। इतना बड़ा मंदिर प्रचार करेगा ना, श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, पार्थ सारथी मतलब भगवत गीता, पार्थ सारथी प्रचार कर रहे हैं, मंदिर प्रचार कर रहे हैं। हमारे श्री और श्री श्री राधा पार्थ सारथी हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित हैं, अचल है ना, तो अब उनको वहां से हिला नहीं सकते, हम अचल है, तो वो भी प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शुरू किया प्रचार, प्रभुपाद ने जिस दिन राधा पार्थ सारथी की स्थापना की उसी दिन प्रचार शुरू हो गया भगवद गीता का, है ना। तो राधा पार्थसारथी नाम सार्थक हो गया अगर हम भगवदगीता का वितरण करते हैं तो, क्योंकि हम सबको क्या दे रहे हैं, पार्थसारथी दे रहे हैं, सबके घर में है। हम चाहेंगे नहीं कि राधा पार्थसारथी जाए, कैसे जाएंगे, भगवदगीता के माध्यम से। आप बता सकते हैं ये राधा पार्थसारथी है, हमारे मंदिर में भी है, आपको चाहिए ले लीजिए, ये पुस्तक के रूप में आया आपके घर में। कलयुग में भगवान जो है दो रूप में प्रकट होते हैं, एक नाम के रूप में, एक विग्रह के रूप में, संकीर्तन के रूप में। तो ये बृहत प्रसंग है, नाम संकीर्तन है पुस्तक का वितरण, और साथ में विग्रह भी है श्री श्री राधा पार्थसारथी दिल्ली में। तो दोनों रूप से जो है दिल्ली में प्रकट हो रहे हैं, नाम के रूप में भी और विग्रह के रूप में भी प्रकट हो रहे हैं। और दिल्ली वासियों की और विशेष कृपा है, यह दया है, इसका लाभ उठाना चाहिए। आज्ञा समय है। सम्मान करने वाले मान्य मानकृत जो व्यक्ति अपने गुरु ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करता है वह मान्य मानकृत कहलाता है। जब कृष्ण के समक्ष गुरुजन एकत्र होते थे वह सर्वप्रथम अपने गुरु को, फिर पिता को, तब अग्रज बलराम को प्रणाम करते थे। इस प्रकार राजीव नयन भगवान कृष्ण परम सुखी थे और अपने सारे आचरणों में शुद्ध हृदय थे। तो यानी कि अपने आचरण के द्वारा भगवान प्रचार करते हैं, सम्मान देते हैं सभी को। जैसे कि हम देखते हैं कि जब सुदामा जी भी पहुंचे द्वारका में तो भगवान ने कितना उनका सादर सत्कार किया, स्वयं अपनी शैया में बिठा के उनके चरण धोए, और साथ में रुक्मिणी जी ने उनकी सेवा की, स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रहे हैं, सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं, और स्वयं कृष्ण उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये था द्वारका का जो वातावरण। कोई भी ब्राह्मण जो है बिना अपॉइंटमेंट के सीधा द्वारकाधीश के पास आ सकता है, वो समय था। तो ये इस प्रकार ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते थे, गुरु का आदर सत्कार करते थे। सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए तो 64 कलाएं सीखी 64 दिनों में, है कि नहीं, कितना आदर सत्कार किया। और क्या किया, उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है मर गया था, जब वो स्नान करने गया था समुद्र में तो वहां वो मर गया, उनको आप लेकर आए, और यमराज जी के पास चले गए उनको लाने के लिए, बताइए, यमराज जी के पास चले गए। तो यानी कि जब भगवान शिष्य के रूप में आते हैं तो अपने गुरु का सम्मान करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं श्रीपाद ईश्वरपुरी से जब महाप्रभु ने दीक्षा ली, उनका आश्रय लिया, तो महाप्रभु का कितना सम्मान कर रहे। गया में श्रीपाद ईश्वरपुरी को प्रसाद अपने हाथों से खिलाया, माल्यार्पण किया, चंदन का लेप लगाया, और उनसे तर्क नहीं किया, लेकिन उससे पहले सबसे तर्क कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि उनके गुरु हैं तो उन्हें तर्क नहीं किया। तो इस प्रकार आदर देने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं भद्र। जो व्यक्ति ना तो उदत है ना गर्व करता है वह भद्र कहलाता है। जब कृष्ण अपने बड़े फुफेरे भाई महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजस्व यज्ञ में भाग लेने आ रहे थे, उस समय उनका भद्र आचरण प्रदर्शित होता है। इससे पहले वाले उसमें और भी बताना चाहेंगे कि भक्त का भी यही स्वभाव होना चाहिए। भक्तिवन ठाकुर ने यही बोला है, शकले सम्मान खुरते शक्ति देहो नाथ जथा जथा, मतलब जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसका सम्मान करना चाहिए। भक्तिवन ठाकुर ने यह बोला है, यही भजन में बता रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो कितना सम्मान करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, पांडवों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कौरवों ने इतना बुरा हाल किया उनका कि कोई रहने की जगह ही नहीं दी उनको, एक तरह से अपमानित करके उनको जंगल में भेज दिया, एक दो साल नहीं 12 साल और 1 साल अज्ञातवास। और ये सब हो जाने के बाद भी महाभारत का युद्ध जो हो भी गया, सब मर भी गए, धृतराष्ट्र बचे हुए थे। धृतराष्ट्र के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अलग महल बना के दिया हुआ था। ये सब होने के बाद भी इससे देखिए युधिष्ठिर महाराज की महानता का पता चलता है कि ऐसे वैष्णव जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, किसी को शत्रु बनाते ही नहीं है। और बताया गया है कि प्रत्येक दिन युधिष्ठिर महाराज प्रातःकाल उठ के सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास जाते थे और वो चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते थे, और उनसे पूछते थे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है, आपको कुछ आवश्यकता है मुझे बताइएगा। इतना कुछ किया उनके साथ, फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो है उन्होंने सम्मान देना जो है कम नहीं। इसको कहते हैं अमानिना मान देन, मान की इच्छा नहीं रखी उन्होंने, और बिना मान की इच्छा रखे हुए वो धृतराष्ट्र को भी सम्मान दे रहे थे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है समझना बात को, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमेशा हम लोग सब कीर्तन करें, कीर्तनीय सदा हरी, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी जीव का भी अपराध नहीं होना चाहिए, किसी भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए, हर भक्त का सम्मान होना चाहिए। आज किसी को पद मिल सकता है, अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। आज आप शेर हैं, कल फिर से चूहे बन सकते हैं, सबके लिए हम तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए भ्रमित ना हो जाए, ब्रह्मा जी निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, अगर भागवत पढ़ेंगे, भागवत का तृतीय स्कंद पढ़ेंगे, भागवत का दशम स्कंद पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी की ज्यादा प्रार्थना है भागवत में, हर जगह लगभग एक ही तरह की प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं इतने गर्वित ना हो जाऊं कि मैं सृष्टि कर रहा हूं, मैं करता हूं। सृष्टि के प्रारंभ में इस प्रकार के ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। सृष्टि करने से पहले ही उनको इस बात का भय था कि सृष्टि करने के बाद कहीं मैं गर्वित ना हो जाऊं, क्योंकि जानते थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रह्मा जी जानते थे कि उनका कितना ऊंचा पद है। जब वो सृष्टि कर देंगे तो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन में होंगे वो। देखा जाए तो ब्रह्मा जी से ऊपर कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में, कोई भी नहीं। कितनी खतरनाक स्थिति है, नहीं? तो ऐसे में ब्रह्मा जी सबको फिर भी सम्मान देते हैं, यह सबसे बड़ी बात। जैसे प्रभुपाल एक बार कॉन्वे हॉल में लेक्चर दे रहे थे 1969 में शायद, बहुत कम लोग आए थे, ऑडियंस नहीं था, तो प्रभुपाल से बोला कि प्रभुपाल हमने तो काफी प्रचार किया था इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन ज्यादा लोग नहीं आए। प्रभुपाल ने कहा तुमने देखा नहीं, ब्रह्मा जी थे, नारद जी थे, सब आए। तो प्रभुपाल ने लंदन में सो स्ट्रीट में ऑल्टर के पास दो आसन रखवाए। प्रभुपाद ने कहा यहाँ आसन होने चाहिए, कम से कम दो आसन होने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद जी से यहाँ पे बड़े बड़े पर्सनालिटी आते हैं, महाजन आते हैं यहाँ पर। तो प्रभुपाद देख रहे थे। तो ये इस प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जाते सभा में कौन बैठा है। श्रोता जो है ज्यादा सम्मान स्थिति में है वक्ता से, अगर देखा जाए, क्योंकि वो अपना कान दे रहा है, सहनशील है, इतनी देर से समय दिया है, तो श्रोता का बड़ा महत्व है। तो इसी तरह बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी का अपमान ना हो, अनादर ना करें, और मान की इच्छा ना करें साथ में। ये बहुत सावधान रहना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ये गुण जागृत जब तक हम नहीं करेंगे कीर्तनीय सदाहरी नहीं होगा। आज कोई अगर नया भक्त है, हो सकता है कि कल त्रिगुण धारण किया हो, हमें बताया कि कौन सा भक्त क्या है। आज हम देख रहे हैं एक साधारण भक्त कितना उसको गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल क्या कितने ऊंचे दर स्तर का वैष्णव है वो तो कल ही पता चलेगा। और आज जल लगता है कि बहुत उच्च स्तर पर है, हो सकता है कि कल हो ही ना कुछ। तो कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें। मान्य मानकृत भद्र, जब कुछ अपने बड़े फुफेरे भाई महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेने आ रहे थे, उस समय उनका भद्र आचरण प्रदर्शित होता है। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि कृष्ण भगवान है, इसलिए उनकी अगवानी के लिए अपने रथ में उतारना चाह रहे थे, किंतु युधिष्ठिर द्वारा रथ से उतरने के पूर्व ही कृष्ण अपने रथ से उतर आए और तुरंत राजा के चरणों पर गिर पड़े। विनीत, यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु अपने व्यवहार में सामाजिक शिष्टता बरतना कभी नहीं बोलते। भद्र आचरण मतलब रथ में युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरने से पहले ही कृष्ण जो है रथ से उतर गए और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिरे। तो भगवान जो है आदर स्थापित करते हैं, स्वयं भगवान आदर स्थापित कर रहे हैं लोक शिक्षा के लिए। यद्यद आचरिति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना सयत प्रमाण कुरुते लोकस्थ अनुवर्तते। जैसे जैसे हम लोग वरिष्ठ होते जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में, उतनी हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, उतना हमें सावधान रहना पड़ता है अपने आचरण के लिए। जब नए होते हैं तो इतना ध्यान नहीं रखते हम लोग, लेकिन जितना हम पुराने होते जाते हैं उतना ही आचरण जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि लोग आचरण देखते हैं। अपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाए, महाप्रभु के लिए भी बताया गया, अपने आचरण के द्वारा सिखाया कि महाप्रभु कितने नम्र थे, कितने विनीत थे। सार्वभौम भट्टाचार्य लगातार 7 दिन को सुना रहे हैं, 7 दिन सुनाया था, 7 दिन 7 रात सार्वभौम भट्टाचार्य सुना रहे हैं उनको वेदांत सूत्र के ऊपर मायावाद भाष्य, और चेतने महाप्रभु चुपचाप सुनते जा रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़े थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके नाला के मित्र नीलांबर चक्रवर्ती के मित्र रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, तो इस कारण से महाप्रभु एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। बोलते हैं कि तुम कैसे हो सन्यासी हो, तुम बोलते नहीं, ना तुम्हारा कोई प्रश्न है ना तुम कोई समस्या कर रहे हो। तो जब उनको कहने के लिए कहा तभी महाप्रभु ने कहा ये शिष्टाचार है ना, ये शिष्टाचार का पालन। इस हम श्री जी गोस्वामी को भी देखते हैं कि इतने बड़े विद्वान, बनारस जाके उन्होंने न्याय शास्त्र देखा, संस्कृत व्याकरण सीखा उन्होंने विद्यावाचस्पति से, और अपने समय के सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान थे, और प्रभुपाद कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई संस्कृत का विद्वान हुआ ही नहीं इतिहास में, और जहां तक दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में भी और संस्कृत भाषा में भी जीव गोस्वामी से बड़ा कोई विद्वान हुआ नहीं, प्रभुपाद कह रहे। तो वो जीव गोस्वामी जाए, लेकिन वृंदावन आए श्रील रूप गोस्वामी का, जब उन्होंने आश्रय लिया तो उनसे भागवत श्रवण करना चाहते थे, भागवत से उनसे सुनना चाहते थे। तो श्रील जी गोस्वामी ने श्रील रूप गोस्वामी की बड़ी नम्रता पूर्वक सेवा की। प्रत्येक दिन श्रील जी गोस्वामी झाड़ू लगाते थे, उनके कपड़े धोते थे, और उनके ग्रंथ में लेखन कार्य में संपादन करने में उनकी सहायता भी करते थे। रूप गोस्वामी जब लिखते थे तो पीछे पंखा कर रहे होते थे श्रील जी गोस्वामी, कितने बड़े विद्वान थे। तो इस कारण से क्या है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि विनीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कई प्रकार के ऐश्वर्य हो सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं भगवत कृपा से। और विनम्रता यही है कि ऐश्वर्य होने के बावजूद भी हम लोग इस पर गर्वित ना हो, क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्यादा किसके पास ऐश्वर्य होगा इस ब्रह्मांड में? सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो ब्रह्मा जी के पास है। जब वो गर्वित नहीं है हम तो हम किस पे गर्व कर रहे हैं? उनकी आयु लंबी है, हर प्रकार से वो समृद्ध है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है, फिर भी नम्रता प्रकट कर रहे हैं। और हम लोगों की उम्र 50 साल 60 साल कलयुग के पति जीव सीधा भी नहीं बैठ पाते हम, इंद्रिया जीर्ण हो जाती है अवस्था में, तो और गर्वित हो रहे हैं किस बात में? गर्व कितना बड़ा भ्रम है बताइए, गर्व होना। कई बार तो होता है कि वास्तव में कुछ होता है ऐश्वर्य तो मान लिया जा सकता है, चलो भाई इस कारण से गर्वित, लेकिन कुछ ना होने पर भी अगर गर्वित हो तो कितना बड़ा भ्रम बताइए, है कि नहीं? ये बड़ी समस्या है, कलयुग का प्रभाव है। तो इसलिए हमें विनीत रहने का प्रयास करना चाहिए, और ये सभी गुण है जो पहले ही बताया, सम्मान करने वाले, विनीत, ये दोनों ही गुण जो है भक्तों के अंदर पाए जाते हैं। त्रिनाद अभी सुने चे न तरोर अभी सही सुना, अमानी न मानी न कीर्तनीय सदारी, नम्रता का लक्षण प्रकट करते। इसलिए जब महाराज प्रताप रूप को देखा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, नम्रता से महाप्रभु की नम्रता को देखकर आकर्षित हो गए। ये विनीत भाव से देखो इतना बड़ा राजा और झाड़ू लगा रहा है सड़क। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। और उदार, हालांकि करुणा से ही मिलता जुलता है, फिर भी उदार एक अलग गुण बताया उन्होंने। जिस व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत मृदु होता है वह उदार कहलाता है। स्वंतक मणि की लूट के बाद उद्धव के कथन से पुष्टि होती है कि कृष्ण इतने दयालु तथा हितकर है कि यदि किसी सेवक से भारी अपराध भी हो जाए। भारी अपराध किससे हुआ था? हमने बताया था पिछली बार, किस राजा से हुआ था? शत्राजी से हुआ था। उन्हें क्या किया था? कृष्ण को बता दिया कि चोर है, कि इन्होंने चोरी की है, मेरे भाई को मार दिया और चोरी कर ली, स्वतंत्र मणि की चोरी कर ली। तो इतना अपराध करने के बाद भी कृष्ण ने क्या उनको क्षमा कर दिया, तो उसको ध्यान में नहीं लेते, यानी कि अगर कृष्ण के प्रति हम कोई अपराध करते हैं तो कृष्ण फिर भी उस अपराध को नहीं लेते हैं, उदारता है उनकी। वे अपने भक्त द्वारा की गई सेवा पर भी पर ही ध्यान देते हैं, जो सेवा की है उसको ध्यान देते हैं, जो कमियां हैं भगवान नहीं देखते हैं। शिशुपाल ने कितने अपराध किए, जन्म लेते गाली देना शुरू कर दिया, और राज सिंह यज्ञ में तो इतनी गाली दे रहा था वो, जब राज सिंहासन में बिठाया, यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया, उनको घोषणा कर दी गई कि कृष्ण से ज्यादा कोई यहां पर यशस्वी और श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, तो उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा, अग्र पूजा होना बहुत आवश्यक है राजयुग में। तो सबने सहमत, सब सहमत हो गए, लेकिन जो शिशुपाल था वो सहमत नहीं था, चुपचाप सुन रहा था, लेकिन बाद में वो इतना ज्यादा द्वेष से भरा हुआ था कि बोलना शुरू कर दिया उसने, और बहुत बोलता गया, और लगभग 100 बार वो अपराध कर चुका था। अब क्या उसने ये बोला कि ये देखो पांडवों को भी देखो, किसकी शरण ली हुई है और किसको अपने साथ रखा हुआ है। तो जब ऐसा जब बोला शिशुपाल ने, तब कृष्ण जब बैठे बैठे वहां से चक्र चला दिया तो शिशुपाल का इस प्रकार वध हुआ। और वहां देखा, सभा में एकत्र लोगों ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और सीधे भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई, सायुज मुक्ति जिसको कहते हैं। लेकिन बाद में ये बात सही है कि शिशुपाल दंत वक्र, ये क्योंकि आखिरी उनका जन्म था, उसके बाद वापस वो वैकुंठ धाम चले गए। तो यहाँ तक ही हम लोग आ लेंगे क्योंकि समय कम है, आज यहीं तक लेंगे, अगली बार लेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ऐसा प्रकाश उन्होंने देखा लोगों ने, आत्मा ज्योति नहीं है, आत्मा से भी प्रकाश निकलता है, जैसे भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है तो जीवात्मा से भी प्रकाश निकलता है, लेकिन आंशिक रूप में वो कम होता है। हो सकता है कि आप एक कमरे को प्रकाशित कर सकते हैं, या हो सकता है 3 एकड़ के एरिया को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान के बारे में आता है तो यस्या प्रभा प्रभुवतो जगदंड कोटि, ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं भगवान अपने शरीर से, आए उनके शरीर का तेज है। हाँ, तो ये देखा गया, सबने देखा, इस प्रकार एक दिव्य ज्योति निकली और सीधा प्रवेश कर गई भगवान के चरणों में जा। बहुत मिलते जुलते हैं। वो तो खैर शाप के कारण नहीं है, वो लीला में आए महाप्रभु का सेवक बने, वो शाप के कारण नहीं, 3 जन्म जो हुए वो शाप के कारण हुए, लेकिन जगाई मठाई के रूप में जो आए वो महाप्रभु की लीला में सहयोग देने आए, क्योंकि हमेशा वो इसी तरह से आते रहेंगे तो उनको फिर दूसरा रोल भी देना ना, और हमेशा जय विजय नहीं आते हैं, ये भी बताया गया, कई बार नंद सुनंद भी आते हैं राक्षस के रूप में। किसने? हाँ, ये तो सर लीला है ना, लोक शिक्षा के लिए। जय विजय तो है, जगाई बढ़ाई क्यों बनते हैं ये, इसलिए क्योंकि महाप्रभु को आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि जब तक विरोध नहीं होगा, क्योंकि देखिए भगवान, देखिए जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर गुण है भगवान में भी है, तो हम यहां तो युद्ध कर लेते हैं, लेकिन वैकुंठ में भगवान किससे युद्ध करेंगे, वहां सारे भक्त हैं। तो विश्वनाथ जी ठाकुर ने ऐसे कहा है, तो भगवान की जब युद्ध करने की इच्छा होती है तो अपने भक्त को ही चुनते हैं, युद्ध यहाँ के जीव से थोड़ा करेंगे, वहां धाम के किसी परिकर से तो करेंगे, तभी तो आनंद आएगा ना। तो वहां के जो पार्षद आते हैं हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के रूप में, उनके साथ वध करने में आनंद आता है भगवान। तो ये क्रोध प्रकट करने का जो अवसर मिलता है भगवान यहाँ पर, जो कि वो प्रकट नहीं कर सकते वैकुंठ, जो नरसिंह रूप धारण करते हैं ये सब भौम लीला है, और वैकुंठ में जो नरसिंह रूप है वो चतुर्भुज रूप में है, 7 या 10। ये इसका अर्थ यही है, अब 1 कदम बढ़ाओ भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे, यही अर्थ है इसका। ये थोड़ा आपने एक बढ़ाया तो वहां से एक वो बढ़ा रहे हैं, आप दो बढ़ा रहे हैं, मटेरियल कैलकुलेशन थोड़ा ये कोई गेम थोड़ा चल रहा है, इसके भाव में समझना है, मटेरियल कैलकुलेशन नहीं करना है, ये भाव को समझ रहे हैं कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये नहीं 1 2 3 ऐसे गिनके नहीं आते भगवान, इसका भाव ये है कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान और अधिक भगवान आपके करीब आते हैं, इसका अर्थ ये है, वो कहने के लिए है, कई बार उसको समझाने का तरीका होता है कि 10 कदम बढ़ाते हैं, 100 कदम भी बोल लो आप, एग्जैक्ट कोई नंबर थोड़ा फिगर है भाई, 10 नंबर, एक नंबर का मतलब है, एक कदम बढ़ाने का मतलब है कि हम शुरुआत करें, जब शुरुआत करते हैं हरिनाम लेना शुरू करते हैं तो उस तरह से भगवान वहां रेसिप्रोकेट करते हैं, वो कहने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न?
एक जगह ऐसे सुना था कि भगवान भक्तों का पक्षपात करते हैं, भगवान को अपने भक्त बस लिए हैं, संकट आता तो उनका पक्ष लेते हैं,
उन्होंने बताया था ना कि राजा जैसे अपने परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखता है, स्वाभाविक है, उसको पक्षपात नहीं कहा जा सकता, या हम के अगर भक्त बनते हैं तो उनके परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं, तो स्वाभाविक है कृष्ण के लिए, लेकिन शत्रु भी अगर भक्त बनते हैं तो भगवान उनको कोई ध्यान रखते हैं, फिर तो इस तरह से समदर्शी है, प्रहलाद महाराज ने तो असुर के परिवार में जन्म लिया ना, प्रहलाद महाराज तुमने को कोस रहे, मैंने तो असुर के परिवार में जन्म लिया है, लेकिन भगवान ने फिर भी उनके ऊपर कृपा की, तो इससे पता चलता है कि जन्म को इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर कोई इसी परिवार में रहकर कोई भक्त बनता है तो भगवान को स्वीकार करते हैं, इसलिए चंडाल देशों में, मलेच्छों के देशों में भी, यावन के देशों में भी भक्त बन रहे, यही तो संदर्शी है। प्रभुपाद से जब पूछा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे हस्ति कवि सुनी चे सौभाग्य पंडिता समदर्शिना, लेकिन आप तो किसी को रास्कल कहते हैं, किसी को फूल कहते हैं, ये कैसे समदर्शी? समदर्शी का मतलब प्रभुपाद का बिना किसी भेदभाव के हम सबको एक कृष्ण भावना का अनुपम भेंट दे रहे हैं, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको हम चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति मिले, ये है समदर्शी का अर्थ प्रभुपाद का। तो भक्त बनने का अवसर सबको मिल रहा है ना, तो इसमें पक्षपात कैसा था? हाँ, ये अगर बोले कि आप सबको नहीं मिलता भक्त बनने का अवसर, केवल जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया उनको, तब कह सकते हैं कि पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो भगवान सबको अवसर दे रहे हैं, है कि नहीं? और खासकर प्रभुपाद जैसे वैष्णव ने महाभागवत जो है प्रभुपाद ने करके दिखाए, उससे पहले भी क्रांति लाए थे भक्तिनो ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने भी ये आंदोलन खड़ा किया इस तरह से कि शूद्र परिवार में जन्म लिए उनको भी ब्राह्मण दीक्षा दे दी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, तभी तो ब्रज में जब गए तो सारे मंदिरों में दर्शन बंद कर दिया, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, सारे मंदिरों के दर्शन बंद करा दिए, इस कारण से क्योंकि इन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मण दीक्षा दे दी, फिर राधारमण मंदिर खुला हुआ तो वहां भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रवचन दिया, कथा के बाद सारे मंदिर के दर्शन खुल गए, तो उन्हें बताया स्पष्ट शास्त्र के आधार पर कि ब्राह्मण किसको कहा जाता है, वैष्णव किसको कहा जाता है, क्रांतिकारी प्रचार था ये भक्ति सिद्धांत महाराज का, क्योंकि उस समय ये अछूत की प्रथा फैली हुई थी, शूद्र अगर सामने से भी आ जाए तो ब्राह्मण लोग नहाने चले जाते थे, परछाई भी पड़ जाए उनकी तो नहाने चले जाएंगे, है ना, इतना बुरा हाल था। तुकाराम की कथा में भी आता है कि बार 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 वो नहाने जाते हैं, बार बार नहाने जाते हैं, तो बार बार जो नहाने जाते हैं तो बोलता है कि आखिर में वो कहते हैं कि देखो लेकिन आपके कारण मुझे बार बार गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिला, है क्या? हाँ, थूकता था वो, थूकता था ना ब्राह्मण, जब तुकाराम को दिखता वो थूकता था बार बार, तो इस कारण से संत तुकाराम जाके स्नान करते थे, तो बार बार स्नान करते, बोलते हैं आप धन्य है आपके कारण मुझे बार बार स्नान करने का मौका मिलता है, तो इस तरह बड़ी बुरी हालत थी उस समय। इसे कई और समाज भी आए, आर्य समाज और ब्रह्म समाज और बहुत सारे समाज आए, लेकिन वो क्रांतिकारी नहीं थे, उन्हें तो और उत्पात मचाया, लेकिन भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने जो है महाप्रभु का आदेश का पालन किया और उन्होंने वास्तव में सिद्धार्थ को स्थापित किया। इसलिए जब उनको सभा में बुलाया गया, भक्तों ठाकुर को जब बुलाया गया, तो भक्तों ठाकुर ने इनको भेजा, भक्ति सिद्धार्थ महाराज को भेजा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ। तो तीन दिन की ये सभा हुई थी और बाद में भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने इसके ऊपर पुस्तक लिख दी, ब्राह्मण और वैष्णव। तो पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों का खूब गुणगान किया, सारे ब्राह्मण खुश हो गए, लेकिन बाद में जब वैष्णव का गुणगान शुरू किया तो सारे चुप हो गए। तो सब बाद में समझे कि हाँ वास्तव में वैष्णव कौन है। तो एक क्रांतिकारी प्रचार था और प्रभुपाद और ज्यादा क्रांतिकारी, जिन्होंने विदेश में जाकर वहां जाकर लोग ब्राह्मण दीक्षा दे और वहां जाकर बिगड़े की स्थापना की, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। इनसे बड़ा संदर्शी कौन हो सकता है, आचार्यों से बड़ा। विदेशों में जाकर प्रभुपाद बोल रहे एक जगह पर, ये जो है बेचारे नए हैं, इन्होंने मलेच्छ परिवार में जन्म लिया है, मैं इनको ब्राह्मण दीक्षा दी है, ये आपकी सेवा करेंगे, मैं जानता हूं कि ये इतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप कृपा करके सहन करना। प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहां पर, डीटी इंस्टॉल कर रहे हैं लीलामृत में, आप प्लीज टॉलरेट करो इनको, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसे क्योंकि बोल दिया तो हो गया, बस सहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने किस तरह अयुद्ध की प्रदान की और बिना किसी कारण के, बिना किसी भेदभाव के सबको जो है कृपा दी। जैसे उमापति महाराज बता रहे थे, भी आए थे सोलने सोमापति महाराज, कह रहे थे वो तो हिप्पी थे और वो तो ऐसे घूम रहे थे वहां पर सड़क में, तो उन्होंने वहां कीर्तन की आवाज सुनी और अंदर गए तो प्रभुपाद कीर्तन एक्सटेसी में सर हिला रहे थे। तो पहले उनको देख के ये लगा कि शायद मुझे मना कर रहे अंदर आने से फिर उसके बाद उन्होंने देखा क्या करूं मैं, देखा और लोग तो बैठे हैं, फिर वो रुक गए, फिर ऐसे धीरे धीरे आ गए। फिर प्रभुपाद ने जब बोला कि जो परम भगवान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ पर्सनैलिटी, ही इज अ पर्सन, जब ऐसे बोला ना प्रभुपाद ने, तो ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी उन्होंने भगवद गीता पढ़ी थी प्रभुपाल ने, उमापति महाराज ने, उन्होंने कहा कि सब यही प्रूव कर रहे कि कृष्ण भगवान नहीं, उन्होंने भगवदगीता से कृष्ण को निकाला हुआ था। और ये पहले ऐसे उन्होंने देखा कि सेंट आया हुआ इंडिया से जो ये बता रहे हैं बार बार कि ही इज एब्सोल्यूट पर्सन, तो इसलिए बड़े प्रभावित हुए और फिर आने लगे रेगुलर, और फिर उसके बाद 66 में दीक्षा भी हो गए, तब से लगे हुए फर्स्ट 12 में। पहले मौला प्रभुपाद ने को पकड़ाई थी महाराज, तो ये है प्रभुपाद की कृपा। तो प्रभुपाद कोई सेलेक्टिव नहीं थे क्राउड के कि इन्हीं को प्रीच करके मैं इनको भक्त बनाऊंगा। प्रभुपाद गए, उन्होंने देखा कि जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश है, इन्हीं को भक्त बना के इनसे शुरू करूंगा प्रचार, ये कहते हैं प्रचार है ना। प्रभुपाद इन्हीं से प्रचार करके दिखाएंगे, बॉडी स्टेट के एपी से कोई बात नहीं, इन्हीं को भक्त बनाएंगे, इन्हीं से पूरे विश्व में प्रचार कराएंगे। बॉडी स्ट्रीट से सन्यासी निकले, बॉडी स्ट्रीट से सन्यासी गए तो कोयले का खान था, वहां से हीरा निकाला प्रभुपाद ने, हीरा जो है कोयले के खान से निकलता है ना, तो कोयले का खान था, सब काले थे वहां। प्रभुपाद कहते थे कि हमारा जो मन है ना कोयले से भी ज्यादा काला है, इतना काला है, इतना काला है कि अगर आप उसको धोने का प्रयास करोगे तो खुद काले हो जाओगे। ठीक है, हरे कृष्ण भक्त। राजीव नयन, पता नहीं लोटस होता, वो राजीव लोचन, हाँ कमल नयन, हाँ राजीव लोचन पुए ना हमारे। हरे कृष्ण, वेलकम टू इंडिया, यू फ्रॉम मॉरिशियस, यू हैव सॉ अवर टेम्पल, हैड दर्शन? No. Did you see our museum? You took prasad? Did you take prasad? Why? Is there? Switch off your mobile. Hare Krishna. I'm not able to understand your question. Kya prashna hai? Saaf sa boli. Aram aram sa.
वैसे लोगों के लिए कुछ ऐसा सही तरीका है जो अपने आप को प्राउड समझ, अपने आप पे बहुत गमन करते हैं कि हम सब जानते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है कौन भगवान है या नहीं है, हम समझते हैं। ऐसे लोग भी
हाँ ऐसे बहुत हैं भारत में, क्या करें हम बताइए, प्रचार करें प्रयास करें, हम लोग बहुत हैं भारत में, बहुत संख्या है भारत में। समस्या ये है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम तो बहुत नजदीक हैं भगवान के, मंदिर तो हमारे पड़ोस में ही है, सिर्फ जाते नहीं है वहां, पीछे ही है दीवार के पीछे, वहां से घंटी की आवाज सुनाई देती है हमें, तो इस कारण से यहाँ के लोग भक्त नहीं बनते। लेकिन विदेशों में भक्त इसलिए बने कि वो बिल्कुल अज्ञानता में थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम जानते नहीं है भगवान के बारे में कुछ।